आज जो हम विचार करना चाहते हैं प्रकाश वाक्य उसका पहला अध्याय 12 पद से लेकर के 16 पद तक, पहला खंड जो है प्रभु यीशु मसीह के वैभव के बारे में, 17 पद से लेकर के 20 पद तक प्रभु यीशु मसीह की वाणी के बारे में, के संदेश के बारे में, दूसरा अध्याय पहले पद से लेकर 7 पद तक पहली कलीसिया जो इफिसस की कलीसिया है उसके बारे में, इफिसस की कलीसिया। सो आइए हम थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ेंगे 12 पद से लेकर के और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा और फिर कर मैंने सोने के सात दीपदान देखे। पिछली बार भी मैंने बताया था सोने के सात दीपदान, ये सात कलीसिया हैं। अगर आप 20 पद पढ़ते हैं इसी अध्याय के 20 पद में, उन सात तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे और सात स्वर्ण दीपदानों का रहस्य यह है, सात तारे सात कलीसियाओं के दूत हैं और वे सात दीपदान सात कलीसियां हैं। ये सात दीपदान जो हैं, बाइबल बाइबल को परिभाषित करती है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन की व्याख्या करती है। ये बाइबल का सिद्धांत है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। कई बार जब हम बाहर जाके इधर उधर खोजते बीनते हैं तो वहां पर अपनी खोपड़ी को लगाते हैं और तब फिर वहां पर परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा जाता है। और ये विशेषता है कि परमेश्वर का वचन इतना सुंदर वचन है जो मेरे और आपको परमेश्वर ने दिया है ताकि हम उसको उसी के द्वारा समझ सकें। अब 13 पद से लेकर के क्या कह रहा हूं, उन दीपदानों के मध्य मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। बार बार प्रभु यीशु मसीह के लिए, ध्यान दीजिएगा इधर, बार बार प्रभु यीशु मसीह के लिए मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र आया है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में मनुष्य के पुत्र के संबोधित करता है। सो कह रहा है मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के वैभव का वर्णन है ऊपर से लेकर नीचे तक, किस प्रकार से परमेश्वर ने उस दर्शन की बात को पुत्र तक पहुंचाया, पुत्र ने पवित्र आत्मा तक पहुंचाया, पवित्र आत्मा ने स्वर्गदूत तक पहुंचाया, स्वर्गदूत ने यूहन्ना तक पहुंचाया, यूहन्ना ने मुझे और आप तक पहुंचाया। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, ये इसका क्रम है। अब यहां पर वो कह रहा है पहली चीज, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती तक एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। मनुष्य का पुत्र की वेशभूषा दिखाई दे रही है। वेशभूषा क्या है, उसका ड्रेस क्या है, वो कह रहा है जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे था। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और पुराने नियम में जाते हैं तो पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं, चाहे वो प्रीस्ट हो, याजक हो, चाहे वो नबी हो, भविष्यता हो, चाहे वो राजा हो, उनकी पोशाक इसी तरह से होती थी। और मैं बार बार इस बात को पहले भी ने समझाया है कि पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं कि तीन विशेष पद थे या तीन विशेष अधिकार थे, याजक, भविष्यता और राजा, तीन। और ये तीन पदवी एक साथ कोई भी नहीं रख सकता था। कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए, अगर शमूएल नबी था तो वो याजक था, राजा नहीं था। शाऊल अगर राजा था और नबी था तो वो याजक नहीं था। कोई भी राजा याजक नहीं हो सकता था, इस बात को ध्यान रखिए। पुराने नियम में कोई भी राजा याजक नहीं हो सकता था। ये परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कई बार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी राजा याजक पद को नहीं संभाल सकता था। कारण क्या होता था, राजा को याजक के पास जाकर के अपने लिए पाप बलिदान चढ़वाना पड़ता था। याजक उसके लिए चढ़ाता था ताकि उसके पाप से छुटकारा मिल सके, बलिदान चढ़ाना याजक का काम होता था। एक राजा हो सकता था, भविष्य हो सकता था, याजक हो सकता था, भविष्य हो सकता था, लेकिन वो राजा और याजक नहीं हो सकता था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी इस पोशाक को देख रहे हैं। ये पोशाक, चाहे वो वैभव की पोशाक जो है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो याजक लोग इसी तरह से पहनते थे। निर्गमन उसके 25 अध्याय के आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर मालूम चलेगा, पता चलेगा आपको कि किस रीति उनके वेशभूषा दी गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र वो श्रेष्ठ मानव बन के इस पृथ्वी पर आया, जो याजक भी है, जो राजा भी है, जो भविष्यता भी है। याजक होकर उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, वो बलिदान चढ़ाया, स्वयं बलिदान। राजा होकर के उसने अपनी राज को इस पूरे विश्व में कलीसिया के माध्यम के द्वारा स्थापित किया। भविष्यता होकर के उसने बहुत सारी भविष्यवाणी, हम देखते हैं मत्तियुस के 23 अध्याय में आप पढ़ते हैं, 24 अध्याय में पढ़ते हैं, जो उसके मुख से निकली गई हैं, यहाँ तक उससे पहले भी जब वो अपनी देह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। सो केवल प्रभु यीशु मसीह जिनके अंदर ये तीनों पदवी पाई जाती है। यीशु मसीह राजा भी है, यीशु मसीह याजक भी है, यीशु मसीह भविष्यता भी है। इसके अलावा भाई पूरी बाइबल में कोई और नहीं है इन तीन पदवियों के साथ। तो जो यहाँ पर वेशभूषा हम देख रहे हैं, और ये वेशभूषा अलग अलग रीति से उन लोगों को पहनाई जाती थी, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने निर्धारित की थी। अर्थात ये वेशभूषा प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मानव बनकर इस पृथ्वी पर आया है, मनुष्य का पुत्र है जिसको संबोधित किया गया है, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर रहा, मेरे और आपके समान, मेरे और आपके समान सब कुछ, केवल एक बात को छोड़ करके, मेरे और आपके समान उसके अंदर पाप नहीं था। भूखा हुआ, प्यासा हुआ, थका, निराश हुआ, ये सब कुछ उसके जीवन में आया। शरीर उसका थकित हुआ, उसको प्यास लगी, उसको भूख लगी, सब कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन वो मेरे और आपके समान पापी नहीं था, पाप रहित। सो पहली बात, तो पहली जो हम देखते हैं कि जो वेशभूषा उसकी है ऊपर से लेकर नीचे तक, 14 पद। दूसरी बात, उसका सिर तथा उसके बाल ऊन सदृश श्वेत और हिम के समान उज्जवल थे। अब उसका सिर, उसके बाल ऊन के सदृश श्वेत, हिम के समान उज्जवल। हिम में और बर्फ में दोनों में फर्क है। हिम इंग्लिश में स्नो बोलते हैं, बर्फ को इंग्लिश में आइस बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल होती है। हिम वो होती है जो ऊपर से गिरती है। पहाड़ों पे आप जाएंगे या बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर वो, उसको हम बोलते तो हैं बर्फ गिर रही है, लेकिन वास्तविक रीति से उसका सही शब्द है हिम गिरना है। और वो बिल्कुल श्वेत होती है, बिल्कुल साफ होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है वो। ये पानी से नहीं, हम लोग 12 बंके में थे उस समय, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम अक्सर बाजार से बर्फ मंगाया करते थे और बर्फ मंगा के उसी से पानी ठंडा करके पिया करते थे। एक दिन बर्फ मंगाई और तोड़ा तो उसमें मरी हुई चूहिया निकली, अब आइस में दब गई, बना दिया। उस दिन से कान पकड़ा, भैया वो नहीं, वो सही नहीं है, शुद्ध नहीं था। लेकिन उसका सिर कैसा है, उसके उसके बाल कैसे हैं, है ना, श्वेत हैं, हिम के समान उज्जवल हैं। ये उसकी उस पवित्रता को दर्शाता है, उसकी उस निर्मलता को दर्शाता है, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण निर्मलता, पूर्ण बुद्धि को दर्शाता है। सिर उसकी उसकी बुद्धि को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बाद, इस मनुष्य के पुत्र के पास जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ बुद्धि है। सो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि वो बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है। बुद्धि उसी के द्वारा सृष्टि की गई है। अगर आप समय निकालें तो कुलुसी उसका पहला अध्याय जब पढ़ेंगे, पहला अध्याय उसके 15-16 पद में, तो आपको मान चलेगा कि इस सृष्टि से पहले परमेश्वर ने कुछ को और भी बनाया था। इससे पहले कि मनुष्य बनाया जाए, परमेश्वर ने कुछ और भी बनाया था, और करीब 7 चीजों का वर्णन है जिसमें सामर्थ्य है, अधिकार है, बुद्धि है, ये महिमा है। ये सारी चीज परमेश्वर ने बहुत पहले सृजी थी। कुलुसी उसके पहले अध्याय में हम वर्णन पाते हैं। सो परमेश्वर के हाथों में बुद्धि के भंडार पाए जाते हैं। सो हम ये देखते हैं उसका सिर बाल किस प्रकार से हिम के समान उज्ज्वल हैं, श्वेत हैं, मतलब उसके अंदर पूरी रीति से पवित्रता पाई जाती है, उसके अंदर पूर्णता बुद्धि पाई जाती है, और ये सारी चीज। तब आगे चल के कहता है उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। आंख उसके शरीर के वस्त्र हो गए, उसके पैर हो गए, पैर से लेकर नीचे तक छाती हो गई, सब कुछ हो गया। उसके सिर हो गए, सिर में बाल हो गए, किस रीति से। अब उसकी आंखें, ये आंखें उसके सिद्ध हैं जो सिद्धता के साथ सब कुछ देखती हैं। और इब्रानियों का लेखक उसमें अपने 4 अध्याय के 13 पद में कहता है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, और एक दिन परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, किसी और से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भी बात को छिपा नहीं सकते। कई बार जवान बच्चे अपने माता पिता से बहुत सारी बातों को छिपाते हैं, कई बार पति पत्नी से, पत्नी पति से बहुत सारी बातों को छिपाते हैं, बहुत सच है, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छिप सकता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, और एक दिन परमेश्वर सब कुछ का न्याय करेगा। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 13 पद। तब आगे चल के कह रहा है 15 पद में, उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो। जब ये धातु पृथ्वी पर से निकाली जाती है तो ऐसी नहीं, जो आज आप इस्तेमाल करते हैं ऐसी नहीं है, जो स्टील आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी नहीं है, उसमें बहुत गंदगी रहती है, और उसको भट्टी में, बड़ी बड़ी भट्टियों में डाला जाता है, और इतना अधिक उसको तपाया जाता है कि बिल्कुल पानी बना करके उसको, तब उसको छाना जाता है, साफ किया जाता है, और कई प्रोसेस में से होके जाते हैं, और तब उसके बाद ये मेरे और आपके काम के होते हैं। इसी रीति पीतल को भी साफ किया जाता है, तांबे को भी साफ किया जाता है, कोई भी सोने को भी भट्टी में जलाकर शुद्ध और साफ किया जाता है। कोई भी धातु जब तक वो भट्टी में नहीं जाती है वो शुद्ध और साफ नहीं होती है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान जो भट्टी में तपा कर चमकाया गया, अर्थात बिल्कुल शुद्ध चमकदार। क्या मतलब है उसके पांव ऐसे चमकदार हैं कि उसके उपस्थिति में अनुग्रह, न्याय और दया पाई जाती है। उसके पांव जो उसकी उपस्थिति का प्रतीक है। जब पुराने नियम में हम देखते थे, जब राजा लोग किसी भी वेदी के पास आते थे और जब वेदी के पास आकर के जो हौज होता था, जहां पर हाथ धोने के लिए पानी होता था, या जितनी भी धातुओं से चीज बनाई जाती थी, सबको बहुत ही तपा करके, साफ करके, सुंदर के साथ तब उसको बनाया जाता था। और सारी विधि परमेश्वर ने बताई थी, इसीलिए निर्गमन की पुस्तक में कि उसको बताया गया था। यहाँ तक कि लेवावस्था की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पांच बलिदानों के बारे में है और उन पांच बलिदानों को किस प्रकार से, किस बलिदान में क्या क्या चीज मिलाई जाएगी, उसके सारा विवरण पाया जाता है। सो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो पवित्रता पर ध्यान देता है, जो शुद्धता पर ध्यान देता है, जो दया पर ध्यान देता है, अनुग्रह पर ध्यान देता है, ये उसके स्वभाव में पाया जाता है, ये उसके उपस्थिति में पाया जाता है। ना केवल इतना, लेकिन जब भी कोई राजा के पास कोई भी आता था तो वो उस पर के पांव पर गिरकर दंडवत करके, दंडवत करते थे, उसकी उपासना करते, उसकी आराधना करते। अर्थात दंडवत करना मतलब ये कि अपने आप को पूरी रीति सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, राजा के पास आकर अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना, समर्पित कर। और ये पांव वो पांव है जिस दिन एक दिन हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। हो सकता है कि आज उसका आप उसको आज स्वीकार ना करें, आज उसको तिरस्कार सुने। जैसे मैं बार बार इब्रानियों के उस पद को मैं आपसे शेयर करता हूं, इब्रानियों उसको 4:3 पद से, कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, सुसमाचार को सुना, लेकिन उनके अंदर वो विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ जिसके कारण वो सुसमाचार को ग्रहण करें, और इसलिए उनका उन्होंने उसका तिरस्कार किया। लेकिन एक दिन आएगा कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने झुकना होगा, उसके राज अधिकार को स्वीकार करना होगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी भाषा, किसी भी देश, किसी भी कहीं का भी हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो। आज बहुत आसानी से लोग यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं और यहां तक जी यीशु मसीह के अनुयायी हैं उनको भी वो लोग परेशान करते हैं सरलता के साथ, लेकिन वो नहीं जानते कि एक दिन उनको भी परमेश्वर सामने झुकना पड़ेगा। सो वो राजा के सामने आकर के दंडवत करते थे और उसकी प्रभुता को और उस पर स्वीकार करते थे और गिरकर उससे दया की भीख मांगते थे, पांव पर गिरकर दया की भीख मांगते थे। बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं। सो अर्थात वो मनुष्य पुत्र कैसा मनुष्य पुत्र है कि उसके पांव उस प्रकार के अधिकार के साथ है, पवित्रता के साथ है, दया के साथ है, अनुग्रह के साथ है, कि एक दिन आएगा जब हर एक जन उसके सामने झुकेगा और उसके पांव पर गिर करके उससे दया की भीख को मांगेगा, हे प्रभु तू मुझ पर दया कर। तब आगे चल के कह रहा है, उसकी वाणी महाजल की छत जैसी है, उसकी वाणी में गर्जन पाई जाती है। यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 28 पद में यूहन्ना वर्णन करता है, यज़कएल 43 अध्याय उसके 2 पद में भी वर्णन करता है कि उसकी वाणी में न्याय पाया जाता है, वो न्याय के साथ बोलता है, अधिकार के साथ बोलता है, उसकी वाणी में गर्जन पाया जाता है। गर्जन मतलब जब आप बैठे और एकदम से बिजली गड़कती है, गर्जन आवाज आती है, कई बार आप कांप जाते हैं, वो मनुष्य का पा देता है, डरा देता है, क्योंकि उसकी पवित्रता महान है। ये सच है, उसके वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है कि अपने न्याय से वो दूसरों को कंपित करता है। और मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के न्याय को मुझे और आपको हल्का नहीं लेना चाहिए, ये गंभीर है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं तो बार बार इन बातों को देखेंगे और क्या हो रहा है, वो समय पूरा हो रहा है कि ये संसार खत्म हो जाए और एक नई सृष्टि बन जाए, इससे पहले कुछ घटनाएं घट जाएं और उन घटनाओं में लोग जान सके प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को, और वो उसको स्वीकार कर सके, अंत तक वो मौका देगा। लेकिन यहां पर सो उसके मुख, तब आगे चलकर कहता है वो ना केवल इतना कि वो कहता है दाहिने हाथ में 7 तारे, उसके मुख से 2 धारी तेज तलवार निकलती है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार के समान है, हम इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, वो इधर से भी और इधर से वार करता है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार के समान है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको उसके अधिकार को स्वीकार करना है, क्योंकि वही उस वचन के द्वारा यूहन्ना उसके 12 अध्याय उसके 48 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है, और अंतिम दिनों में दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वही मेरे और आपको दोषी ठहराएगा। क्या कि मैंने उसके वचन को सुन करके क्या उसको स्वीकार किया है या उसका तिरस्कार किया है। और परमेश्वर मुझे और आपको बार बार अवसर देता है, कोई परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रोमियो बात कहता है उसने अपनी सृष्टि से अपनी प्रभुत्वता को, अपने अधिकार को प्रकट किया, प्रदर्शित किया है। तो उसकी वाणी है वो दो धारी तेज तलवार के समान है। वो कहता है उसका मुख मंडल चेहरा मध्यान के सूर्य के सदृश दमक रहा था, अर्थात जो मध्य का समय होता है दोपहर का, सूरज यूं चढ़ता है यूं जाता है और फिर यूं नीचे उतरता है, तो जब यहां पर पहुंचता है बिल्कुल अपनी चरम सीमा की अपने प्रकाश में, उसी को हम मध्याह्न बोलते हैं। और उसका चेहरा किस प्रकार से, मुखमंडल इस प्रकार चमक रहा है, क्या कारण था? पुराने नियम में मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा परमेश्वर को नहीं निहार सका था। परमेश्वर ने कहा था तू मुझसे नहीं देख पाएगा, मुझे नहीं निहार पाएगा, तो परमेश्वर जाता है केवल मूसा परमेश्वर की पीठ को देखता है। तो अर्थात ये पूरा जो मनुष्य का पुत्र है, अगर हम निष्कर्ष करके इस बात पे आए तो हम उसके यहाँ पर पवित्रता को देखते हैं, उसके यहाँ पर अधिकार को देखते हैं, उसके यहाँ पर प्रभु सत्ता को देखते हैं, सार्वभौमिकता को देखते हैं और न्याय को देखते हैं, उसके साथ साथ उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम भी उसमें छिपा हुआ है। 12 पद से लेकर के 16 पद तक हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं। तो यूहन्ना जो वर्णन कर रहा है, ये परमेश्वर ने अपने पुत्र के बारे में यूहन्ना तक पहुंचाया, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के बारे में यूहन्ना तक पहुंचाया, बार बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, और यूहन्ना इन बातों को मेरे और आप तक पहुंचा रहा है ताकि मैं और आप उस बात को देख जान सके कि क्या है। और एक बात मैं बताऊं, इसलिए इस पृथ्वी पर इस आयु में उसके सामने झुककर दंडवत करना, उसकी आराधना करना, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी आशीष की और आनंद की बात है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती कि इस पृथ्वी पर मैं और आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सके। वो दबाव से ना हो, वो डर में ना हो, वो न्याय के भय से ना हो, लेकिन स्वेच्छा से हो, उसको देखते हुए क्योंकि वो क्यों उसको मुझे करना है, कैसे करना। आखिर में जब जाएंगे तो उस बात को देखने पाएंगे। जो दूसरे अध्याय के 7 पद में वो जाता है तो उसको वर्णन करता है किस रीति से। तब उसके बाद 17 पद से लेकर के अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह की वाणी किस रीति से, वो कह रहा है जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। यूहन्ना कह रहा है मैं उसके पैरों पर मृतक का सा गिर पड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा। कितना अद्भुत है, मैं तो भयभीत हो गया था, मैं तो डर गया था, मैं उसकी सारी उस चीज को, उसको देख करके, उसके वैभव को देख करके मैं तो डर गया था, मैं तो कांपने लगा था। लेकिन उस यीशु मसीह ने क्या करा, यीशु मसीह ने, मैं मृतक के समान हो गया था पर उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो एक प्रतिज्ञा का हाथ है, परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो संभालने का हाथ है, परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है याद दिलाने का हाथ है, परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वो मुझे और आपको ढाढ़स दिलाने का हाथ है। परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर अपने दाहिने हाथ से संभालता है और संभाल के उनको आगे उठाता है। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पढ़ा और उससे कहा भयभीत मत हो, डर मत, मैं ही प्रथम हूं, अंतिम और जीवित हूं। मैं प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, बार बार इन शब्दों का प्रकाश वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रथम अंतिम, अल्फा ओमेगा, पिछली बार भी हमने देखा था, डर मत। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। कब मर गया था, जब मैंने तेरे लिए, तेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया था, उस समय मैं मारा गया, गाड़ा गया। लोगों ने तो कुछ और सोचा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लोगों ने चाहे कुछ और सोचा पर परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए उसको तीसरे दिन जिला उठाया ताकि हम उसके पर विश्वास कर सके। आप ताजुब करेंगे, मसीहत ही केवल एक ऐसा विश्वास है, ध्यान दीजिएगा, क्रिश्चियनिटी कि केवल एक ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ है जिसमें अगर जो लोग उपासक हैं तो उसके उपासक है जो मर करके जी उठा है और आज भी जीवित है, अन्यथा और कोई नहीं है, केवल मसीहत में। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी तो एक बहुत बड़ी बात है, केवल मसीहत एक ऐसा विश्वास, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मसीहत ही केवल एक ऐसा विश्वास है जो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं जिनका प्रभु मनुष्य बनकर इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है, वो कह रहा मैं युगानुयुग तक जीवित हूं, युगानुयुग तक, अनंत तक, और इसीलिए वो मुझे और आपको अनंत जीवन देने को तैयार है। इसीलिए उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए, क्योंकि अनंत प्रभु मुझे और आपको अनंत जीवन दे सकता है। एक शेष बात है, और इसलिए मुझे और आपको भयभीत नहीं होना है। कह रहा मैं युगानुग जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। नए नियम में करीब 5 अलग अलग कुंजियों का वर्णन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिख सकते हैं। स्वर्ग राज की कुंजी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, मत्ती उसका 16:19। ज्ञान की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, लूका 11:52। दाऊद के सिंहासन की कुंजी उसके हाथ में, प्रकाशवा के 3:7। आताकुंड की कुंजी उसके हाथ में, जिसको चाहे वो आताकुंड में डाले, 9 उसका 1। अधोलोक की कुंजी 1:18। वो कह रहा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। और फिर 19, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इनके पश्चात होने वाली हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो तूने देखी, कौन सी बातें तूने देखी, तूने उस परमेश्वर के इकलौते जन को मनुष्य के पुत्र बनते हुए इस पृथ्वी पे देखा। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, जो देखे तूने यीशु मसीह को देखा तूने चिता से, जो हो रही है आज वर्तमान में जो हो रही है और आने वाले दिनों में इसके पश्चात जो होने वाली है, उन्हें लिख ले। उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे मैं बता चुका हूं। दीपदान है, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। अब जब हम दूसरे अध्याय में पहली कलीसिया को देखते हैं, 7 कलीसियाओं का वर्णन है। इफिसियों की कलीसिया, कह रहा है इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख। दूत जो शब्द है वो एक्चुअली मैसेंजर है, और अगर मैसेंजर के साथ साथ उस समय जो सचमुच में है, उस समय जो कहना चाहिए इफिसियों की कलीसिया के जो पास्टर है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो भी कलीसिया, कि ये तेरे पास पहुंचाया जा रहा है, तू इसको कलीसिया तक पहुंचा दे, कलीसिया जान जाए। और मेरे प्रिय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो 7 कलीसिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये उस समय थी, इतिहास में थी, और आज भी उन्हीं की स्थिति हम कलीसियाओं में देखते हैं, भूतकाल में और उसके बाद वर्तमान। लेकिन उसका भविष्य क्या है वो भी हम देखेंगे, कलीसियाओं का भविष्य क्या है। और 7 कलीसियाओं में ये 3 चीजें साथ साथ चल रही हैं, जो भूतकाल में व्यवहारिक रीति से कलीसिया स्थापना की गई। इफिसी कलीसिया के जब बारे में आप बात करते हैं तो प्रेरित काम उसके 19:20 अध्याय में जब पौलुस कुरिन्थ के बाद इफिसी में आता है, वहां पर कलीसिया की स्थापना होती है। और इफिसियों उस समय एशिया माइनर में एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था, और 7 उस नगर में 7 अजूबे पाए जाते थे, वंडर्स पाए जाते थे। और उस 7 अजूबे में, 7 वंडर्स में एक और बात थी जो जिसके लिए ये इफिसी नगर जो है बहुत फेमस था। ये अच्छा एक व्यापारी नगर था, जहां पर व्यापार बहुत होता था, धनवान नगर था और बहुत ही कंजेस्टेड लोग रहते थे। लेकिन उन सब कुछ के बाद वहां पर पौलुस कलीसिया की स्थापना करता है, और 3 साल इफिस में रहकर, 19:20 में 3 साल रह करके वो कलीसिया के विश्वास को दृढ़ करता है। उसने देख लिया ये कलीसिया में इन न केवल कलीसिया की स्थापना होने, कई जगह थोड़े दिन रुका और आगे बढ़ गया, थोड़े दिन रुका और आगे बढ़ गया, लेकिन यहां पर उसने विशेष रीति से कुछ समय दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि उस इफिसी की में एक बहुत भव्य मंदिर था डायना का, देवी डायना, और उसके वो उपासक थे। बहुत बड़ा विशाल मंदिर था यह, करीब 450 फीट हाथ मतलब लंबा, और करीब 60 फीट ऊंचा, और करीब 75 से ज्यादा फीट चौड़ा, ऐसा बहुत बड़ा मंदिर बना था। और वहां पर एक मिथ्या थी, या एक तरह का जो उनका विश्वास था उस समय, ध्यान दीजिएगा कि इफिसियों में रोमन का राज का अधिकार नहीं था, ये उससे फ्री थे, इससे स्वतंत्र थे, लेकिन आसपास रोमन राज बहुत ही प्रबलता के साथ बढ़ रहा था। और जिस प्रकार से रोमी राज में ये चीज थी, उनके विश्वास के अनुसार ही था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक और मनुष्य मध्यस्थ है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक और मनुष्य मध्यस्थ है, जिसको हाई प्रिंस बोलते हैं, जो उनके पोप शब्द जो शुरू हुआ था उस समय से, वो जो है ठीक इसी तरह से ये डायना में विश्वास था कि अगर उनको परमेश्वर तक पहुंचना है तो किसी मनुष्य का सहारा लेना है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे गंदी बात ये थी कि वहां पर उस मंदिर में वैश्याओं को एम्प्लॉय करके रखा गया था। एम्प्लॉय करके क्या, उनको वहां पर रखा गया था ताकि उनको वेतन दिया जाता था और वे वैश्याएं उस मंदिर की देखभाल करते थे। और वैश्याएं देखभाल करने के कारण हर प्रकार का कुकर्म उस मंदिर में होता था, डायना का मंदिर। और जब कलीसिया आरंभ हुई तो प्रथम 30 साल, पहले 30 साल ये कलीसिया ने बहुत ही दृढ़ता के साथ सुसमाचार के लिए जीवन व्यतीत किया, जिसको आगे हम अभी देखते हैं इसी में वर्णन। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि समझाने प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उसके 30 साल के बाद उनका विश्वास निर्बल हो गया और फिर वो इधर उधर होने लगे। तो इसीलिए ये फिजिक कलीसिया को कुछ रह रहा है। तो दूत जो है वो समय के पास्टर है, सेवक है, जो कलीसिया को संचालित कर रहे हैं। तो उस समय की कलीसिया के संचालन करने वाले, आज की कलीसिया के संचालन, वही संदेश उनके पास भी है। तो संदेश उस समय के लिए था, आज के लिए भी है और कल के लिए भी है। जब तक प्रभु यीशु मसीह आकर के अपनी कलीसिया को ले नहीं जाते, तब तक के लिए बना हुआ है। वो क्या कह रहा है, कुछ चीजें इसकी प्रशंसा की बातें हैं, इसके कलीसिया के लिए कुछ बातें प्रशंसा की हैं, प्रशंसा बातें। क्या प्रशंसा की जा रही है? वो कह रहा है, वो जो दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हैं और वो जो 7 दीपदानों के मध्य चलता फिरता है, ये कहता है कौन? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता। वो क्या कह रहा है, किस चीज को कह रहा है? वो कह रहा है, मैं तेरे परिश्रम, तेरे कार्य को, तेरे परिश्रम, जो सुसमाचार के लिए तुमने परिश्रम किया। जब कलीसिया आरंभ हुई थी, ना केवल इन लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन ये एक ऐसी कलीसिया बन चुकी थी जो सुसमाचार प्रचारी कलीसिया बन गई थी। और बहुत अधिक इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन धीरे 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 ये बैकस्लाइड हो गए। कह रहा, मैं तेरे कार्य को, तेरे परिश्रम को जानता हूं, धैर्य को जानता हूं। क्लेश में बहुत उन्होंने विरोध का सामना करा था, विद्रोह का सामना करा। आप में से भी बहुत होंगे, जब आपने गांव देहातों में या परिवार में जब आपने विश्वास किया, तो विश्वास करने बाद आपके घर वालों ने कितना अधिक विद्रोह किया होगा। मेरे प्रियो, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आए, हम सोचते हैं कि केवल हम अन्य जाति परिवार से होते हैं तभी हमें सतावनी हर एक के सामने। जब अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चाई के साथ खड़े होंगे, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं तो नामधारी मसीह परिवार से आया था, CNI मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से मैं आया था। मैं सोचता था मेरे बाप दादा सब ईसाई हैं, मैं भी ईसाई हूँ, मेरा नाम तो रजिस्टर में लिख चुका है। जब मैं पैदा हुआ चर्च में क्या छिटका दे दिया और मेरा नाम लिख गया। नहीं 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 नहीं, गलत है। चाहे हमारे बाप बिशप हों, चाहे दादा बिशप हों, चाहे ये हो, कुछ नहीं। हर एक मनुष्य, बाइबल कहती है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। सब ने पाप, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी को। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं ताकि आपको ये वास्तविकता को समझना चाहिए, जाना चाहिए, चाहे किसी भी परिवार से। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया और प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद मैं एचएल में था और मैंने अपने घर वालों को लिखा और तब मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं बपतिस्मा लूंगा, तो उनकी समझ में तो मेरा बपतिस्मा हो गया था। पिकेट बिशप थे, बिशप पिकेट थे, उन्होंने दिया था, बहुत फेमस थे उन दिनों में, 60-70 में बहुत फेमस थे। उन्होंने दिया था, अरे तुम्हारा तो बपतिस्मा उन्होंने दिया था, अरे तुम्हारी तो मेंबरशिप उन्होंने करी थी, अरे तुम। मैंने कहा नहीं, मैं उस समय तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैंने ना समझी से बपतिस्मा लिया था, मैंने नहीं लिया था, लेकिन आपने दिलाया था, मैंने नहीं लिया था। तो जब मैंने उनको लिखा, उस समय तो ये सब फोन नहीं थे, पत्र लिखा, तो यही पत्र में जवाब आया, तुम हमारे लिए मर गए, तुम जो कुछ करना चाहो कर दो। बहुत सारी ऐसी कहानी जो मैं अपने जीवन के द्वारा कटा, लेकिन उससे मेरा विश्वास मजबूत हुआ। सो मेरे प्रियो, ये सच है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जितने भी जन प्रभु यीशु मसीह का इसीलिए लिखा है, जो धार्मिकता से जीवन व्यतीत करेंगे वो सताए जाएंगे। सो यदि आपने व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, अगर मैं आपसे पूछूं आपका बर्थडे कब है, आप फट से बता देंगे। आप शारीरिक जन्मदिन आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको आत्मिक जन्मदिन मालूम है? और बाइबल क्या कहती है, जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब निकोदेमस आया, तो यूहन्ना उसके 3 अध्याय में निकोदेमस से कहा कि जब तक ये व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमस कहने लगा, अरे मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतना अब मैं कैसे अपनी माँ के घर में जा करके जन्म लूंगा। योहन्ना उसका तीसरा अध्याय। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर में जन्मा शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। ये सियोन की डॉक्ट्रिन नहीं है, भूल जाइएगा, ये सियोन चर्च की डॉक्ट्रिन नहीं है, सियोन चर्च का सिद्धांत नहीं है, ये बाइबल का सिद्धांत है, ये बाइबल का सिद्धांत है, ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। बिना नया जन्म के हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। और इसलिए आपको अपने पापों को मान करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। आपको मालूम चाहिए कि किस दिन आपने आत्मिक रीति से प्रभु को स्वीकार किया। जैसे शारीरिक बर्थडे आप बनाते हैं, आत्मिक बर्थडे भी आप, मैं याद रखता हूँ अपने, कई बार बोल चुका हूँ, 9 फरवरी 1972 दिन फ्राइडे शाम को 6 बजे 5 वजन रोड, वो दिन था जब मैंने नया जन्म पाया था, मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में। मैं दिन को नहीं भूलता, समय को नहीं भूलता, स्थिति को नहीं भूलता, और मुझे स्पष्ट है। मेरे प्रियो, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ प्रेम के साथ, इस पर विचार करिए। और इसलिए वो कह रहा, और ये फिजिकली सिया, उस समय जब कलीसिया स्थापित थी तो ये लोग बहुत सी सतावने सैनिक के लिए तैयार थे। लिखा हुआ है कि मैं तेरे धैर्य को जानता हूँ, और ये भी कि दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता। तेरा जीवन अलगाव का जीवन है, दुष्टों से तू अलग रहता है, संसार से अलग रहता है, अंधकार का और ज्योति का कोई भी संबंध नहीं है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है, उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले दूसरे पद में जा पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने काश और अंधकार को दोनों को अलग किया, परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया। रोमियो पहले अध्याय में आएंगे, और पौलुस के बारे में पौलुस कहता है, मैं प्रभु के लिए सुसमाचार के लिए पृथक किया गया हूं, अलग किया गया हूं। एक क्रिश्चियन लाइफ जो है संसार से अलग की हुई लाइफ है, एक मसीह जीवन संसार से अलग किया हुआ जीवन है। पहले हम संसार में थे, अब संसार के नहीं है। ये जब तक हमारे जीवन में ना आए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये लोग इस प्रकार के थे, कह रहे तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता, और ना केवल ये जो अपने आप को प्रेरित कहते पर है नहीं, तूने उन्हें परखा और झूठा पाया है इनके पास। क्यों? क्योंकि इनके अंदर शिक्षा की दृढ़ता थी, परमेश्वर के वचन को सच्चाई से जानते थे, परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को सच्चाई से जानते थे, परमेश्वर के सुसमाचार को सच्चाई से जानते थे, और ये दृढ़ता थी इनके पास, और इससे वो अपने आप को सेपरेट कर सकते थे, अलग कर सकते थे। नहीं, आज क्या होता है, गंगा गए तो गंगा दास, जमना तो गंगा, कोई भी हमारे घर में आया, यीशु का नाम ले लिया, बस ठीक है ठीक है, अरे वो आया, चाहे हमें मालूम नहीं यहोवा विटनेस कौन है, हमें मालूम नहीं जीसस ओनली कौन है, हमें मालूम नहीं सेवन डेज एडवेंटिस्ट कौन है, हमें ये नहीं मालूम, कोई किसी के बारे में मालूम नहीं, कोई भी, हाँ यीशु का नाम ठीक है, क्या विश्वास, नहीं मालूम। और हमें परमेश्वर के वचन को समझना और जानना है। जब तक वो नहीं होगा हम अलगाव का जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, और इन झूठे शिक्षकों से भी नहीं बच पाएंगे। यही तो कारण है कई लोग विश्वास में क्यों डगमगा जाते हैं, क्योंकि झूठे शिक्षक को नहीं पहचान पाते। तब आगे कहता है वो, तुझ में धैर्य है और तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। मैं उस स्थल को नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन प्रेरित काम उसका 19 और 20 अध्याय आप पढ़िए, जहां पौलुस को भी सतावनी का सामना करना पड़ा, उसको लोगों ने मारने की कोशिश करी थी, पूरा योजना बनाई थी, पर लोगों ने उसको बचाया था। हाँ, यही तो एक और संदेश लेकर आ गया, एक और सुसमाचार लेकर आ गया मेरे प्रियो। लेकिन कह रहा, तुम हे एफिसियों के लोगों, तुम थके नहीं, तुमने सुसमाचार को स्वीकार किया, तुमने सुसमाचार के लिए परिश्रम किया, तुमने तो सुसमाचार के लिए धीरा रखा, तुमने दुष्ट लोगों से कोई समझौता नहीं किया, तुमने दुष्टता को परखा और उनसे अपने आप को अलग किया, यहां तक कि दुख उठाते उठाते कितने दुख आए, लेकिन तुम उसके कारण थके नहीं हो। और तब आगे चल के 6 पद में एक और बात कहता है, और इतना अवश्य है कि तू निकोलियों के कार्यों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। निकोलियों, दो शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द से जुड़ करके ये शब्द बनाया निकोलियों, और ये वही लोग थे जिन्होंने एक अलग सिद्धांत ला कर रख दिया था कि अगर परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हो, रोमन कैथलिक से लेकर के लाए थे वो, करके पहुंचना चाहते हो तो किसी मनुष्य को तुम्हें सहारा बनाना पड़ेगा, कोई मनुष्य हमें उद्धार नहीं दिला सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह। ना कोई बाबा, ना कोई गुरु, ना कोई टीचर, ना कोई ये, ना कोई, ना कोई, कोई कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए बाइबल में लिखा है, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल प्रभु यीशु के। और तभी परमेश्वर के वचन में कहा, यदि तू यीशु को प्रभु करके स्वीकार करे, जो फिलिपी की कलीसिया जब स्थापित हुई थी तो उसके लिए 16 अध्याय में उसको भी हम पाते हैं 31 पद में। तब आगे चल करके तो ये उनकी बातों के लिए वो प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा क्या कर रहा है, तू ऐसा इफिसी की कलीसिया, तुम ऐसी कलीसिया रहे हो, जब तुमने सुसमाचार सुना तुम्हारे जीवन परिवर्तित हुए, तुम्हारा मन परिवर्तित हुआ, तुमने सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके तुम उस मार्ग पे आगे बढ़े हो, तुमने कठिनाई सही है, क्लेश सहा है, दुख सहा है, धीरज के साथ सब कुछ सहते हुए उसके कार्य में तुम लगे हुए हो, उसका परिश्रम तुम के लिए करे हो, सुसमाचार को तुमने फैलाया है, सब कुछ करा है। लेकिन तब चार पद में कहता है, परंतु क्या कह रहा है चार पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मैंने बताया आपको 30 साल तक एक कलीसिया बहुत मजबूत कलीसिया थी, लेकिन 30 साल के बाद जब यूहन्ना ने इस स्थिति में पहुंचा, करीब 90-95 साल का हो गया, तो 30 साल के बाद ये कलीसिया कहना चाहिए ये एक तरह से ठंडी हो गई थी, चाहे संघर्ष के द्वारा ठंडी हो गई हो, चाहे आसपास की झूठी शिक्षाओं के द्वारा ठंडी हो, कोई भी कारण, वो कह रहा है पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। याद करिए, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया था आपका जीवन कैसा था, आप प्रभु के वचन के लिए कितने ललाहित रहते थे, प्रभु की संगति के लिए कितने ललाहित रहते थे, प्रभु के लोगों के साथ वचन सीखने के लिए कितना ललाहित रहते थे, प्रभु के कामों में कितने ललाहित रहते थे, हर चीज में, तन से, मन से, धन से आप कितने अधिक समर्पित थे, कितने अधिक ललाहित रहते थे। लेकिन धीरे 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 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, क्या वही आपके अंदर जोश है, क्या वही आपके अंदर प्रेम है, क्या वही आपके अंदर जिज्ञासा पाई जाती है, या धीरे धीरे आप कई सारी चीजों में घिर गए, शायद पहले अकेले थे, अब परिवार बन गया, विवाहित हो गए, परिवार कुछ और बढ़ गया, कुछ और हो गया, धीरे धीरे मुझे तेरे विरुद्ध बात कहनी है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कितने बार हम बैठ करके अपने प्रेम को जांचते हैं जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, कितना अधिक। अब कई सारी बातों में हमारे पास बहाने लग जाते हैं, हम चाहते तो हैं लेकिन, वो लेकिन जो शब्द था ना, बड़ा गड़बड़ शब्द है, और जितना अधिक आप जैसे लेकिन लगाएंगे बाकी जितनी बातें सब कवर कर देती है। चाहते तो है ये करना, चाहते तो है ये करना, चाहते तो ये करना, लेकिन ऐसा, पहले हमारी भूख रहती थी कि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, सीखेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब धीरे धीरे जब हमारा शायद नौकरी पक्की हो गई, शायद व्यवसाय अच्छा चलने लगा, शायद हम व्यस्त रहने लगे, परिवार बढ़ गया, कुछ और हो गया, तब अब हमारा ध्यान धीरे धीरे, तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। आज सोचिए, विचारिए, आपका क्या वो प्रेम पहले जैसा आज बना हुआ है? ये उस समय की स्थिति है, ये आज की स्थिति है, ये उस समय तक बनी रहेगी जब तक प्रभु यीशु मसीह द्वारा आकर न्याय नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर न्याय सबका करेगा, जिलाए सब जाएंगे, चाहे अविश्वासी चाहे विश्वासी, सब जिलाए जाएंगे। कुछ है जो न्याय के लिए जिलाए जाएंगे, कुछ है जो इनाम के लिए जिलाए जाएंगे, लेकिन ये जो स्पिरिट है ये मेरे और आपके लिए भविष्य को तय करने का, तैयारी का पीरियड है। भविष्य को, आप क्या भविष्य को मैं और आप तैयार कर रहे हैं? तब आगे चल के कहता है, इसलिए स्मरण कर, याद कर, सोच विचार कर, बैठ शांत हो जा, सोच तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। इसलिए अब एक चुनौती है, पहले वो अप्रिशिएट कर रहा है, पहले उसको प्रशंसा कर रहा है, अब यहां पर एक चुनौती दे रहा है, तुझे अपने आप को जांचना है। और मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है मैं और आप अपने जीवन को जांचें, हमारा प्रेम प्रभु परमेश्वर के प्रति, चाहे वो हमारे साक्षी के प्रति हो, चाहे मैं प्रभु की संगति के प्रति हो, चाहे मैं प्रभु के भवन में देने के प्रति हो, चाहे समय देना, धन देना हो, कुछ भी देना हो, कुछ भी हो, हमारा क्या इच्छा कह रहा है, स्मरण कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूं, और यदि तू मन आ फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। कितने दुख की बात होगी, तेरा दीपदान कलीसिया, उस कलीसिया को मैं उस स्थान से हटा दूंगा जो स्थान मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं। क्या मतलब है? वो जो स्वर्ग में वो स्थान मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं उससे हटाकर किसी और स्थान पर तुपा। कारण न्याय का छठे पद में हमने देखा निकोलस की कार्यों से घृणा करता है जिसके जिससे मैं भी घृणा करता हूं। ये दो शब्द से बना था और मनुष्य को मध्यस्थ बना करके परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। सातवां पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है, जिसके सुनने के कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या आता है। हर उसमें जिसके सुनने के कान हो, जिसके सुनने के, क्या उनके पास सुनने के कान नहीं थे? थे, पर किस प्रकार से सुन रहे थे? इस कान से सुन रहे थे, इस कान से निकाल दे रहे थे। कितनी बार हम भी करते हैं ना, घर में बच्चे रहते हैं हमारे, पापा कहते हैं बेटा एक गिलास पानी ला देना, बेटा ने अच्छा मैं ला रहा हूँ ला रही हूँ, और अपने बिटिया अपने फिर काम में किसी में जुट गई। पापा इंतजार कर रहे हैं कि बिटिया भी गिलास पानी लाए, फिर थोड़ी देर बाद बिटिया एक गिलास पानी ला देना, फिर सुना उसने हाँ अभी ला रही हूँ, फिर अपने काम में लग गई। तब फिर थोड़ी देर बाद बाप क्या, क्या तूने सुना नहीं? क्या मतलब उनका सुना नहीं? अगर तूने सुना होता तो तू आज्ञा मानती, तुरंत पानी ला के देती। अगर तू पानी नहीं ला के दे रही है, अगर तू टाल रही है, तो उसका मतलब तू सुना को अनसुना कर रही है। और कितनी बार परमेश्वर के वचन को हम सुने को अनसुना करते हैं। जिसके सुनने के कान हो सुन ले, कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से परमेश्वर के स्वर्ग में खाने को दूंगा। जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। इसीलिए जो जीवन का वृक्ष है, आप 22 अध्याय के 2 पद में, 14 पद में, 19 पद में, 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय है। उत्पत्ति पहले और दूसरे अध्याय में जीवन वृक्ष को हम पाते हैं। परमेश्वर ने वहां पर कहा था, लेकिन वहां पर उसने जो परमेश्वर ने सुनाना चाहा उसने नहीं माना, और ना मानने के कारण क्या हुआ, पाप आया, और पाप के कारण मनुष्य भटक गया, और तब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से उसको बाहर निकाल दिया और उस जीवन के वृक्ष पर उसने पैरे बैठा दिए ताकि इसको छू करके वो जीव उसको में से कोई खाने ना पाए। हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 20 पद से आगे पढ़ते हैं कि आदम हवा को निकाला गया, उन स्वर्गदूतों को वहां पर चौकीदारी के रूप में बैठा दिया गया और उस वृक्ष को सुरक्षित रख दिया गया ताकि मनुष्य ना चुने। लेकिन धन्य है वे जो उस दिन उस स्थान में प्रवेश करेंगे जहां वो जीवन का वृक्ष सुरक्षित है और परमेश्वर उसमें से खाने के लिए मुझे और आपको अवसर देगा। मेरे प्रियो, और उस स्थान पे खाने के देने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ा? सबसे ज्यादा कीमत तो प्रभु को देना है। जब मैं और पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो चुके थे, मृत्यु को हमने अपना लिया था, दंड हमारे पर आ चुका था, परमेश्वर संत थे, दूत थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु न जीवन पाए। अब जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो पुनः उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां की उस जीवन का वृक्ष सुरक्षित है और उसमें से वो खाने पाएंगे। प्रकाश द्वारा उसके 22 अध्याय में बात है। सो यह पहले ही कलीसिया में हमने इन बात को देखा, लेकिन प्रोत्साहन है, प्रशंसा है, पर चेतावनी है। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ बातों को देख के प्रभु मेरे और आपकी प्रशंसा कर सकता है, लेकिन आवश्यक यह है कि मैं और आप अपने आप को सचेत करें, उसकी चेतावनी को गंभीरता से लें, उन वार्निंग्स को गंभीरता से लें, ताकि हम उस दिन के योग्य बन सकें, ताकि उस फल में खा सकें। तो इफिसियस की कलीसिया पहली कलीसिया है जिसको ये परमेश्वर संदेश दे रहा है, जो उस समय ऐसी स्थिति थी, आज भी वो स्थिति दिखाई दे रही है और आगे भी हम देखते जा रहे हैं। परंतु सच है कि हमें इन कलीसियाओं से सबक लेना है और अपने जीवन को तैयार करना है। परमेश्वर काश मेरी और आपकी सहायता करें। प्रश्न यह है, मेरे और आपके जीवन का पहला प्रेम क्या आपको स्मरण आता है, या कहीं समर्पण की जरूरत है पुनः? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसके 12 अध्याय, हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। काश मेरा और आपके जीवन पुनः उसके लिए समर्पित हो सके, ताकि हम अगर आज आंख बंद हो जाए तब भी हम उस स्थान में प्रवेश कर सके जहां पर वो जीवन का वृक्ष सुरक्षित रखा है, जिसको हम खाएंगे परमेश्वर हमें देगा, और तब अनंत काल तक हम उसके साथ वास करने पाएंगे। वो वृक्ष जीवन का वृक्ष हमें अनंत काल की मृत्यु से बचा करके अनंत काल के जीवन तक हमें ले जाएगा। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना।